मुश्किल अल्फाज की वजाहत। मसलहुम, मसल, मसल के माने क्या होते हैं? हाँ, मानित या एग्जाम्पल, मिसाल के लिए ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इस्तौकदा, इस्तौकदा का रूट है वो काफ दाल, वो काफ दाल, इसके मानी है आग का भड़क उठना। वकदा, आग का भड़क उठना। औकदा, आग जलाना जबकि इसमें शोले पैदा हो जाएं। और एक बात याद रखिएगा, अरबी जबान में जब जो वर्ब है इसके शुरू में नून सीनता लगता है या सीनता या अलिफ सीनता, तो उससे ना कोई चीज के मांगने के मानी पैदा हो जाते हैं। जैसे इस्तखारा, खैर, खैर है अच्छी चीज, और इस्तखारा क्या है? अच्छी चीज को तलब करना। जैसे गफारा, मगफरत, इस्तगफार, मगफरत तलब करना। तो अलिफ सीन ता जब लगता है तो आप कोई चीज जैसे मांग रहे हैं, चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या है, वकदा मैंने बताया रूट वर्ड है, लेकिन इस्तौकदा, तो अलिफ सीन ता जब लग गया तो क्या है कि ईंधन इकट्ठा किया, फिर आग या चराग रोशन किया, यानी आग की रोशनी मांग रहे हैं, चाह रहे हैं, ठीक है। ईंधन इकट्ठा करके आग या चराग रोशन किया। नारन, नारन जो है इसका रूट वर्ड है नूर। नूर का रूट वर्ड भी नूर है और नार का रूट वर्ड भी नूर है। नूर और नार, इन दोनों का मादा, उनका रूट एक ही है। नारन, आग। नार कौन सी आग होती है? रोशनी का अंसर इसमें निस्बतन बहुत कम होता है, और हरारत और तपेश और सुर्खी का अंसर बहुत ज्यादा होता है, तो इसको नार कहते हैं। अगर आप इन्हीं आयात को जैसे अभी आज जो हम पढ़ रहे हैं देखें, तो यहां पे नूर का लफ्ज भी है, नार का लफ्ज भी है, और इसके आगे ही अदाअत है, अदाअत। तो कुरान मजीद में रोशनी के लिए या नूर के लिए तीन चार लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं। एक नार का है जो अभी हमने पढ़ा कि रोशनी इसमें निस्बतन बहुत कम होती है, लेकिन हरारत जैसे हीट या तपिश या सुर्खी जो है वो नूर की निस्बत इसमें ज्यादा होती है, यानी इसमें हरारत, तपिश और सुर्खी का आंसर ज्यादा होता है, तो ये नार है। दूसरा लफ्ज क्या है यहाँ पे, अदाअत। अदाअत का रूट है दौत वो हमजा, दो जो, नूर की एक एक किस्म है। जिया जो है, जिया भी इसी से है, जैसे नाम रखते हैं लोग जिया उल हक, है ना। तो जिया अगर रोशनी भी हो और साथ हरारत और तपेश और सुर्खी भी हो तो वो जिया है, जिया है। रोशनी भी है, आप ऐसा कर सकती हैं, रोशनी प्लस, यानी लाइट प्लस हीट, रोशनी है साथ में हरारत है, तपिश है और सुर्खी भी है, यानी रेडिश पन भी है उसके अंदर। तीसरा लफ्ज इसी आयत में आप देखें तो बेनूर रहीम, ठीक है ना, बेनूर रहीम, तो नूर, नूर इसका रूट है, इसके मानी है वो रोशनी जिसमें रोशनी और चमक तो हो, वो रोशनी जिसमें रोशनी और चमक तो हो मगर हरारत तपेश और रंग में सुर्खी ना हो, यानी नूर में ज्यादा हरारत नहीं होती, रंगत ज्यादा नहीं होती, जैसे ठंडक ठंडक होती है, एक पीस सा होता है। तो हमने यहां पर जो है रोशनी के लिए तीन लफ्ज पढ़े हैं। आपने सुना होगा एक होते हैं ऑपोजिट वर्ड, और एक ऑपोजिट तो नहीं होते लेकिन सिमिलर होते हैं। ऑपोजिट कैसे है, मसलन डे, डे का ऑपोजिट क्या है, नाइट, ठीक है, और डार्क, डार्क का ऑपोजिट क्या है, लाइट। तो ये बिल्कुल ऑपोजिट यूज होते हैं ना, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे हैं कि सिमिलर होते हैं लेकिन थोड़े थोड़े मानी में फर्क होता है, उनको अरबी जबान में मुतरादिफात कहते हैं। मुतरादिफ जो ऑपोजिट होते हैं उनको मुतजाद कहते हैं। मुतजाद मीम ता द्वाद अलिफ दाल, मुतजाद। और जो सिमिलर होते हैं लेकिन मानी में थोड़ा बहुत फर्क पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, मुतरादिफ। मीम ता रा अलिफ मुतरादिफ दाल फा, ठीक है, मुतरादिफ दाल फा मुतरादिफ। तो ये जो तीन लफ्ज हैं जो अभी हमने एक ही आयत में पढ़े हैं, नारन अदात बिनूर रही नूर, ये तीनों लफ्ज ऑपोजिट हैं या मुतरादिफ हैं, मुतरादिफ हैं। मुतरादिफात जमा को कहते हैं, बहुत यानी मुतरादिफ की जमा मुतरादिफात है। तो ये अरेबिक टर्म है। तो हमने ये देखा कि रोशनी के लिए जो है तीन लफ्ज आज हमने पढ़े, इसमें एक है दो जिया से है, ये नूर की एक किस्म है जिसमें रोशनी भी होती है प्लस इसके साथ ही हरारत तपिश और सुर्खी भी होती है। दूसरा लफ्ज हमने पढ़ा नारन का, इसमें रोशनी कम होती है बल्कि बहुत कम होती है लेकिन हरारत और तपिश ज्यादा होती है, सुर्खी भी बहुत ज्यादा इसमें होती है, तो ये नार बन जाती है। तीसरा लफ्ज है नूर का, वो रोशनी जिसमें रोशनी भी है चमक भी है मगर हरारत और तपिश और रंग में सुर्खी नहीं है, ठीक है, तो ये है नूर। फिर इसके बाद यहाँ पे आप देखें कि इसी आयत में एक लफ्ज है अदात के बाद मा हौलहू हॉल, हॉल जो है यही इसका रूट वर्ड भी है, इसके मानी क्या है, किसी चीज के इर्द गिर्द, किसी चीज का आसपास। हम उर्दू में भी कहते हैं आपका हाल कैसा है, आपका इर्द गिर्द, आपका राउंड अबाउट ये कैसा है, जब हम पूछते हैं दूसरे से आपका हाल क्या कैसा है, कभी कोई नाक पर बात करता है, कभी आंख पर करता है, कभी कहता है कि तबीयत ठीक नहीं है, जिस्म दुख रहा है ना, तो हाल हॉल ही इसका भी रूट है ना। मानी क्या है, इर्द गिर्द आस पास। जहाबा जो है ये वर्ब है, इसके मानी है जाना, जब इसके साथ जो है वो जहाबा के बाद इसम से पहले नाउन से पहले बा की प्रेपोजिशन आ जाए, बा का हर्फे जार आ जाए तो मानी होते हैं ले जाना। अकेला जहाबा के मानी क्या है, जाना। जहाबा असलम, असलम गया, लेकिन अब यहां पे क्या है, जहाबा के बाद बा आ रहा है तो असलम को कोई और ले गया, ठीक है, तो जहाबा बा के मानी क्या है, ले जाना। तरका, तरका के मानी है छोड़ देना, तरक कर देना, तरका। आप ये एक लफ्ज इस्तेमाल करती हैं कि उसने तरके, उसका तरका ये है, तरका का मतलब क्या है, मरने वाला जब मर जाता है पीछे वो जो कुछ छोड़ जाता है उसके लिए भी तरका का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जुलुमात, इसका रूट वर्ड है जोए जो लाम नीम, मानी है बेइंसाफी करना, कम करना, बेइंसाफी करना, कम करना, अंधेरे को भी कहते हैं जुल्मत, क्योंकि जुल्मत अंधेरा है कि वो बेइंसाफी करता है अंधेरा के रोशनी पर आ जाता है, गालिब हो जाता है, तो रोशनी को कम कर देता है, खत्म कर देता है। अंधेरे के लिए आम लफ्ज खारात का हो या किसी और चीज का अंधेरा हो, जुल्मत का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। तो जुलुमात जमा है, जुलुमात जमा है, जुल्मत एक अंधेरा और जुलुमात बहुत से अंधेरे, इसी से जुल्म है। एक बात याद रखें, अरबी जबान में कुछ चीजें मुजक्कर होती हैं, मेल कुछ फीमेल होती हैं, मोनस है ना। तो मोनस जो है उसकी कुछ किस्में हैं, जैसे आपको ग्रामर में आप पढ़ेंगे इसकी तफसीलात, लेकिन मोनस के कुछ साइन भी हैं और कुछ चीजें मोनस ही यूज होती हैं, जैसे सूरज सूरज है वो मोनस है, चांद है मोनस है, आसमान है वो मोनस इस्तेमाल होगा, जमीन है मोनस है, हवाएं मोनस है, शराब के तमाम नाम मोनस हैं, हरूफ हिज्जा मोनस हैं, ठीक है। तो इसी तरह तीन साइन आज आपने याद करने हैं मोनस के, वो क्या हैं? ता, आम तौर पे जब ता आता है किसी नाउन के बाद, किसी नाउन के साथ, तो फिर वो मुअन्नस होता है, जैसे यहाँ पे जुलुमात, ठीक है। और कभी आप इस जुलमत यानी गो ताए, कभी ता लंबी होती है जैसे ये लिखी हुई है, कभी ता साथ जुड़ी हुई होती है, ताए मरबूता उसको कहते हैं, कभी ता जो है वो थोड़ी सी हटकर आती है, जैसे रबवा बुलंद जगह, वो के बाद हा अलग से आई। तो ये तीनों ता जो है ये जब भी किसी लफ्ज के आखिर में होंगी तो मुअन्नस होगा मोस्टली। तो आज आप जुलुमात, जुलुमात क्या है यहाँ पे? मोनस है, ठीक है, क्योंकि ता आपको बता रही है कि ये मोनस है। राद, राद जो है इसके मानी है कड़क, गरज, यानी ऐसी बिजली, जब वो बिजली ऐसी जो कि गरजती है, कड़कने वाली बिजली। दूसरा है बर्क, ये भी बिजली के लिए इस्तेमाल होता है लेकिन चमकने वाली बिजली। कुछ बिजली ऐसी होती है जिसमें लाइट की निस्बत थंडर, उसमें आवाज साउंड ज्यादा होती है, उसको कड़कने वाली और जो है वो गरजने वाली बिजली कहते हैं। कुछ बिजली ऐसी होती है जिसमें लाइट होती है, बर्क चमक होती है। यहां पे ये दो बिजलियां आपने पढ़ी, रात बर्क, तीसरी बिजली भी यहीं पर है, सवाएक, सवाएक इसका रूट है स्वाद ऐन काफ, स्वाद ऐन काफ, गिरने और गिरकर जलाने वाली बिजली, भस्म कर देने वाली बिजली। गिरने और गिरकर किसी चीज पे नुकसान पहुंचाना, उसको बिल्कुल ही जला के रख देना, कोयला बना देना, भस्म कर देने वाली बिजली। तो राद, बर्क और सवाइक, ये तीनों कौन से अल्फाज हैं? मुतरादिफात हैं। मुतरादिफात पे है तो ये बिजली ही, लेकिन डिफरेंट तरह की बिजली है। जब रात की बात होगी तो वो बिजली जिसमें कड़क हो, जब बर्क की बात होगी तो वो बिजली जिसमें लाइट हो, चमक हो, और जब स्वायक की बात होगी तो वो बिजली जो कि गिरती है और गिरकर जलाती है। तो स्वायक का वाहिद क्या है? सायका। बाज लोग ये नाम भी रखते हैं, तो बाज लोग ये नाम भी रखते हैं। अच्छा, इसी आयत में आप, मैंने चूंकि ये तीन वर्ड एक जैसे थे इसलिए इनको इकट्ठा कर दिया, फिर पीछे आए। बर्कून के बाद क्या है? यज आलूना। यजालूना का रूट है जीम आइन लाम जाला। जाला के मानी होते हैं बनाना, रखना, डाल देना, इस तरह। ये आम एक मानी का लफ्ज है जो आम तौर पे इसका इस तरह इस्तेमाल किया जाता है। फिर इसके बाद है अफाबेहुम, इसका रूट वर्ड है स्वात बा आयन, उंगलियां। असाबिया का लफ्ज यहां पे उंगलियों के लिए आया है और ये असबा की का जमा है, असबा अलिफ स्वाद बा आयन। और असबा किस हिस्से को कहते हैं उंगली के? उंगली का नाखून वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, पोर। ये पोर और खम का मजमुआ है, यानी जहां पे ये मुड़ता है ना, यहाँ इतना हिस्सा, ये इसको हम अरबी जबान में असबा, और इसकी ये वाहिद है, इसकी जमा है असाबिया। आजानिहिम, इसका रूट है अलिफ जाल नून उज़्न। कान को कहते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया था पहले भी कि हम जब पढ़ेंगे तो रूट वर्ड यानी बेसिक वो लेटर क्या है तो उससे पढ़ेंगे, और फिर उसकी फैमिली के वर्ड भी बनाएंगे ताकि हमें फिर ट्रांसलेट करना आ जाए। क्योंकि कुरान को आप यूं जब पढ़ती हैं, देखिए आपको बड़े बड़े मुश्किल मुश्किल लफ्ज लगते हैं, जब आप इसके रूट वर्ड निकाल लेती हैं तो आपके लिए चीज जो है वो आसान हो जाती है ना। तो अब आप देखें कि आजान का रूट क्या है, अलिफ जाल नून, कान को कहते हैं। अच्छा, इसी से आजान भी दी जाती है। अजान को अजान क्यों कहते हैं? कानों पे हाथ रख कर अजान दी जाती है। इसी से इसकी फैमिली का एक लफ्ज है इज्न देना, उसको इज्न दिया, उसकी उसको परमिशन दी। तो परमिशन भी कब देते हैं? पहले कान पर तवज्जो देते हैं, आप सुनते हैं कि उसने क्या कहा, फिर आप उसको कहते हैं कि हाँ मैं तुम्हें इस चीज की इज्न देता हूं, इज्न देती हूं, मैंने तुम्हें इसकी इजाजत दी। हजर, हजर जो है यही इसका रूट है। इसके मानी है डरना बचना। हजर, अच्छा इसी से उधार के मानी लेके ये लफ्ज जो है, जो वार के इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, जंग के आलात, उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। क्यों इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि जब इंसान बचाव करता है, अपना अपने आप को सेव करना चाहता है, तो इंस्ट्रूमेंट को यूज करता है। तो हिज्र, वहां पे हिज्र लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। और मौत, मौत जो है यही इसका रूट है, और इसके मानी क्या है कि जब इंसान जो है इस दुनिया से चला जाता है, मर जाता है, जब जिस्म के अंदर रूह जो है वो बाकी नहीं रहती। मुहीतुन, हौत से है, हौत, हा वो त्वा, हौत का मतलब है घेरना, घेर लेना। और हौत का रूट वर्ड, जैसे इसका ये रूट वर्ड है, इसकी फैमिली का लफ्ज है अहाता। आप कहते हैं कि हमारा जो हवेली है ना हमारी, उसका बहुत बड़ा अहाता है, आपने उसके इर्द गिर्द बहुत सी जगह घेरे में ली हुई है। हौत, हौत का रूट, हौत इसका मुहीत का रूट हौत है, और इसी की फैमिली का एक लफ्ज है अहाता। बिल काफिरीन, इसका रूट क्या है? आप लोग सब बताएं मिलकर। शाबाश, काफारा, कफारा। इसके बेसिक हमने मानी क्या पढ़े थे के हकीकत को छुपा देना, हकीकत पर पर्दा डालना। और काफिर को काफिर इसलिए कहते हैं कि वो अल्लाह को, आखरत को, तौहीद को और अकायद को झुठलाता है, यानी रियलिटी जो है ना उसको डिनाई करता है, तो इसलिए उसको काफिर कहा जाता है। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि एक किसान को भी अरबी जबान में काफिर कहा जाता है, क्योंकि किसान दाने को जमीन के अंदर, मट्टी के अंदर छुपा देता है, ठीक है, उसको भी कहा जाता है। इसी तरह हमने ये पढ़ा था अरबी जबान में नाइट, लैल को भी काफिरातुन कहते हैं। क्यों? इसलिए कि जो रात जब आती है तो दिन की रोशनी को छुपा देती है, उसे पर्दा डाल देती है। अच्छा, इसी आयत में सूरत अल बकरा की आयत 19 जो है, इसको आप शुरू में जब देखें तो औ जो है, औ के मानी या के हैं, ठीक है। औ जब इस्तेमाल होता है तो क्या मानी देता है? या का। काफ जब इस्तेमाल इस तरह आता है ना, उसके माने होते हैं कि मिसल, माने उसकी मिसाल उस जैसी है, जैसे किसी और चीज से किसी की मिसाल देनी हो ना सेम, तो उसके लिए का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। सैयब, सैयब हमने नहीं पढ़ा ना, आता है आप लोगों को सैयब? बारिश के लिए तो ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसका रूट क्या है? स्वाद वो बा, स्वाद वो बा इसका रूट है। सख्त बारिश के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। बाज़ुकात बादल को भी सौंप कहते हैं, बादल के लिए भी, बारिश के लिए भी, और ऐसी जोरदार बारिश जिनमें बादल भी खूब गरज रहे हों और बिजली भी खूब चमक रही हो, और बड़े बड़े कतरों वाली मोटी मोटी बारिश के लिए।
मूसलाधार।
मूसलाधार, मूसलाधार तो तेज होती है ना, लेकिन क्या है कि जोरदार बारिश, हाँ मूसलाधार भी कह सकते हैं, जोरदार बारिश, मूसलाधार बारिश, बादल भी खूब गरज रहे हैं और बिजली भी खूब चमक रही है, और मोटी मोटे कतरों वाली बारिश हो रही है। तो कुरान में बारिश के लिए भी मुख्तलिफ अल्फाज हैं। आज आप सय्यिब का लफ्ज जो है इसको आप याद कर लीजिए। फिर इसके बाद जो है असमा, ये वैसे तो आप सबको आता ही है, असमा जो है ये क्या है? आसमान को कहते हैं, लेकिन आप इसको आज समझ लीजिए कि सीन मीम वो इसका रूट वर्ड है। इसके बुनियादी मानी है बुलंदी के। सीन मीम वो इसका रूट वर्ड है, बुनियादी मानी है बुलंदी के। हर चीज के ऊपर के हिस्से को समा कहते हैं। मसलन पौधे होते हैं ना, पौधे उनका जो ऊपर का हिस्सा है उसको भी समा का कहते हैं अरबी जबान में। इसी तरह बारिश ऊपर से आती है उसको भी अरबी जबान में बाज औकात समा कहा जाता है। यानी नबातात को भी, क्योंकि वो जमीन से ऊपर होते हैं, उसको भी समो कहते हैं। मतर, बारिश को भी समो कहते हैं और बादलों को भी समो कहते हैं। तो हमने असल में इसके बुनियादी मानी याद रखने हैं कि हर शय के बलाई हिस्से को, हर चीज के ऊपर के हिस्से को जो है वो समो यानी कहा जाता है। असमा तो ऊपर वाला है, आसमान, तो इसलिए उसको ये लफ्ज जो है वो इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। यकादु करीब है, अलबर्कु बर्क जो है वो बिजली, ऐसी बिजली जिसमें चमक हो। यख्तफू खाफा इसका रूट वर्ड है, इसके मानी है किसी चीज को जल्दी से पकड़ लेना, जैसे इंग्लिश में स्नैच कहते हैं, स्नैच, हाँ स्नैच। तो खा त्वा फा इसके मानी है तेजी से कोई चीज उठा लेना, कोई चीज छीन लेना, उचक लेना। अब स्वार, बा स्वाद रा बसर पहले भी आप पढ़ चुकी हैं कि बसर जो है ये किसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, कि जाहिरी आंख का जो अमल होता है ना, देखना, किसी चीज को निगाह में रखना, उसके लिए बसर का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। कुल, कुल हर चीज को कहते हैं। इसका ऑपोजिट क्या है कुल का? जुज। जुज कोई पार्ट होता है, कुल होल चीज होती है, टोटल होती है। तो कुल हर चीज, मा जो, तो कुल्लमा जब भी, यानी हमेशा ऐसा ही होता है। अगौ, इसका रूट क्या है? दौत वो हमजा, अभी आज हमने पढ़ा दौ, इसी का फैमिली का ज़िया। मशो, मशो का रूट है मीम शीन या, इसके मानी है आम रफ्तार से चलना फिरना। अरबी जबान में आम रफ्तार से चलने फिरने के लिए मशा का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप किसी से, इमशी इमशी इधर चल कर आओ, आप ऑर्डर दे रही हैं किसी को, इमशी कम हियर, इंग्लिश में आप ये कहेंगी। तो आम रफ्तार से चलने के लिए मशा का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। यमशी वो चलता है, नमशी हम चलते हैं, मशा वो चलता है या चला, मशो वो सब चलते हैं, ये जमा का है। अजलमा इसका रूट वर्ड अभी हमने पढ़ा, जोए लामीम, जुल्म से है, अंधेरे के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। इसके मानी में कमी करना भी पाया जाता है। पामू, पामू का रूट है काफ वो मीम, ये आपने सूरत फातिहा में पढ़ लिया था, ठीक है। कामू, खड़े होना। मशाओ का ऑपोजिट क्या है? कामू। और अदाआ का ऑपोजिट क्या है? अजलमा। क्योंकि जब किसी चीज का ऑपोजिट सामने आता है फिर उसका पता चल जाता है और ज्यादा उसकी अच्छी पहचान हो जाती है। शाह, शई, शई इसका जो है वो रूट है और चीज को कहते हैं। और शाह यहाँ पे शीन अलिफ और हमजा, तो इसके माने क्या है? चाहना, यानी कोई चीज चाहना या कुछ भी चाहना। जहाबा, फिर अब जहाबा के माने क्या है? जाना। और ले जाना के लिए इसके बाद क्या आना जरूरी है? बा। इन्ना, इन्ना बेशक। और अगर अन्ना हो तो मानी होते हैं ये के। इन्ना बेशक, अन्ना ये के। अला पर, कुल, हर, शैइन चीज, कदीर कदर से है, काफ दाल रा कदर। ताकत होना, कुदरत होना। या अय्युहा, या हर्फे नदा है, किसी को बुलाने के लिए, जैसे आप उर्दू में कहती है ना ए, तो अरबी जबान में या। अय्युबी ए, और फिर हा, तो या अय्युहा ए। अन्नास, ये आप पढ़ चुकी हैं कि इसके दो रूप हैं, अलिफ नून सीन, नून सीन या। अब आपको इस तरह याद करने हैं, जब अलिफ नून सीन कहेंगी तो मानी क्या है कि जैसे इंसानी फितरत से जो लोग मुआफ़कत रखते हैं, उसको पसंद करते हैं, तो उसी से इंसान बना कि वो मिलजुल कर रहना पसंद करता है। और अगर आप कहेंगी नून सीन या नसिया, मानी है भूल जाना कि इंसान भूलनहारा है। ए ओ बुदू का रूट वर्ड आप सूरत फातिहा में पढ़ चुकी हैं, आयन बा दाल अब्द से है। रब, रा बा बा पढ़ चुकी हैं। खलाका, क्रिएट करना, बनाना। जाला का लफ्ज भी बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन खलाका खास तौर पर क्रिएशन के लिए, किसी चीज को क्रिएट करने के लिए, हाँ पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसके बाद है कबलिकुम, कबल। कबल जो है ये पहले को कहते हैं, है ना, कबली। लाल्ला, लाल्ला के मानी है शायद, हो सकता है, ये शक के मानी पैदा करता है, लाल्ला शायद हो सकता है। तत्तकून, इसका रूट वर्ड है वकिया। मैंने आपको बताया था तीन लेटर जो हैं वो अलिफ या, बाज़ औक़ात बेसिक वर्ड में नजर नहीं आ रहे होते, लेकिन वो कभी गिर जाते हैं कभी आ जाते हैं, तो तत्ताकून में वो नजर नहीं आता लेकिन वो काफ या इसका रूट वर्ड है। ये हरूफ इल्लत हैं, ये कभी गिर जाते हैं कभी आ जाते हैं। जाला बनाया, अल अर्दा जमीन। अल अर्दा जमीन, फिराशा फर्श, फर्श इसका रूट है, फाराशीन। इसके मानी है जैसे कुरान मजीद में ये लफ्ज जो है जैसे बिछाने के लिए भी इस्तेमाल होता है, किसी चीज को स्प्रेड आप करती हैं, और जमीन के लिए भी इस्तेमाल होता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जमीन को बिछा दिया हुआ है बिछोने की तरह, तो इसलिए ये इस्तेमाल किया जाता है। वस्समा बिना, बिना जो है इसका रूट वर्ड है बा नूनिया। इसके मानी है दीवार या कोई इमारत बनाना, को भी कहते हैं, दीवार को भी कहते हैं, जैसे सूरह सफ में है ना, बुनियाने मरसूस, हाँ ऐसी दीवार जो शीशा पिलाई हुई दीवार हो, साथ साथ हर ईंट जो है वो जुड़ी हुई हो। तो बिना का लफ्ज हम उर्दू में जैसे किसी चीज को बनाने के लिए भी कहते हैं ना कि ये बनाया ये किया, तो असल में बनाना, बनी हुई चीज, इमारत, दीवार, छत, सब के लिए इसका इस्तेमाल जो है वो होता है। किसी चीज को क्रिएट करना या किसी चीज को सीक्वेंस से रखना, हाँ बिल्ड करना, उसके लिए भी हाँ बिल्ड करना ज्यादा मुनासिब है, उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। आगे है अनजला, नजला के मानी होते हैं उतरना, और जब नजला से पहले अलिफ आ जाता है ना अनजला, तो मानी है उतारना, ये बात याद रखिएगा। नजला और अनजला में क्या फर्क है, नजला के मानी क्या है, उतरना, अनजला उतारना, जहाबा जाना, जहाबा बा ले जाना। तो अरबी जबान में जब अल्फा हरूफ लेटर जो हैं वो इंक्रीज होते हैं तो मानी भी इंक्रीज होते चले जाते हैं। आप यूं मत समझे कि नजला और अनजला एक ही बात है, जहाबा और जहाबा एक ही बात है। आप नोट करेंगी, आप महसूस करेंगी कि जो जो लेटर्स बढ़ते चले जाते हैं, तो किसी की बड़ी अच्छा ये एक जुमला है, मैं कहती होती हूँ आप लोग याद कर ले इसको, कि हुरूफ की ज्यादती अल्फाज के मानी की ज्यादती पर दलालत करती है। हुरूफ की ज्याती यानी हुरूफ का ज्यादा होना तो अल्फाज के मानी की ज्याती पर दलालत करती है, यानी ये डेफिनेट बात है कि जब लेटर इंक्रीज होने चले होते चले जाएंगे वर्ब के अंदर या नाउन के अंदर, तो मानी भी बढ़ते चले जाएंगे। ये अहम बात है कि हुरूफ की ज्याती अल्फाज के मानी की ज्याती पर दलालत करती है, उसकी दलील है। तो इसी तरह से आगे आप देखिए कि मा अन पानी, इसी को बाज लोग कहते हैं मोया, माया, माए जमजम, पानी के लिए लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। समरात, समरात से पहले है अखरजा, खरजा का मतलब होता है निकलना, अखरजा निकालना। खरजा में कितने लेटर हैं, थ्री, तीन हैं, और अखरजा में कितने हैं, चार हैं। कितने लेटर का इजाफा हुआ, एक का, मानी भी बढ़ गए। पहली चीज है निकलना, खरजा निकलना, अखरजा निकालना। समरात, सा मीम रा, समर फल के लिए इस्तेमाल होता है आम तौर पे, फल ताजा हो या खुश्क हो, यानी फ्रेश हो या ड्राई हो, फ्रूट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा जैसे कोई दरख्त है, ट्री है, उसका कोई भी हिस्सा जो खाने के काबिल है, वो तो पत्ता ही क्यों ना हो, उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। दरख्त के उन अज्जा को कहते हैं जिनको हम खाते हैं या खाया जाता है। समर वाहिद है, असमार इसकी जमा है, और समरात भी जमा में समरात। तो ये ता क्या बता रही है, मुअन्नस है, माशाल्लाह आपको तो बड़ी जल्दी सबक याद हो गया। हर चीज के प्रॉफिट के लिए, हर चीज के नफे के लिए भी समर लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है कि इसका समर क्या है। एक अरबी जबान का शेर है, आप याद कर लें तो बड़ी ही अच्छी बात है, आपको लिख देते हैं यहाँ पे बोर्ड पे भी, सुन लीजिए। समरतुल इल्मी अल अमलु सालेह, समरतुल इल्मी अल अमलु सालेह, व समरतुल अमल सालेह अल जन्ना, व समरतुल अमल सालेह अल जन्ना। इसका तर्जुमा यह है कि इल्म का फ्रूट यह है कि अमले सालेह लोग करने लगे। अगर कोई शख्स इल्म हासिल करता है तो वो इल्म फ्रूटफुल हुआ के नहीं, वो नॉलेज जो था वो उसको फ्रूट लगा के नहीं, तो उससे पता चलेगा कि इल्म के अकॉर्डिंग टू द इल्म पीपल के एक्शन में, उनके डीड्स में, उनके बिहेवियर में अमले स्वाले कितना पैदा हो रहा है। समरतुल इल्मी अल अमलु स्वाले, अगर किसी के पास नॉलेज तो है, इल्म तो है, लेकिन इल्म अमल में नहीं चेंज हो रहा, बदल नहीं रहा, तो इल्म ऐसा इल्म है जो फ्रूटफुल नहीं है, ऐसा बीज है जिससे द्रव नहीं निकला, ऐसा नुतफा है जिससे कुछ पैदा नहीं हुआ। तो वह समरतुल अमले स्वाले, अमले स्वाले का फिर समरा क्या है? अलजन्ना। जो अमले स्वाले करेगा, जो अच्छे अमल करेगा, तो उसका बदला क्या है कि अल्लाह उसको इंशाल्लाह फिर जन्नत देगा। रिस्क, रिस्क आपने पहले भी पढ़ा था, वरजक ना हम यूनफिकून, के जो हमने उनको रिस्क दिया है उसमें से खर्च करते हैं। रिस्क का लफ्ज मादी और मानवी दोनों लिहाज से इस्तेमाल किया जाता है। यानी कुछ चीजें होती हैं जैसे जो है वो मादी लिहाज से, जैसे हम उनको महसूस करते हैं, हम उनको टच कर सकते हैं, जैसे खाना है, फ्रूट है, फूड है, लिक्विड है, पानी है, पीते हैं, ये सारी चीजें रिस्क हैं। खाने पीने की सब चीजें हम कहते हैं रिस्क को जाया ना करें। इसी तरह कुछ अच्छी जो क्वालिटीज हैं उनको भी रिस्क कहते हैं। मसलन कोई शख्स इंटेलिजेंट है, जहीन है, ये भी रिस्क है। कोई शख्स जिसको लिखने की उसके पास सलाहियत है, ये भी रिस्क है। कोई शख्स बोलता बहुत अच्छा है, ये भी रिस्क है ना। तो आंखों से देखना, ये भी अल्लाह ने एक रिस्क की नेमत से इंसान को जो है वो मालामाल किया है। तो रिस्क जो है ये बड़ा वसी मानी में लफ्ज जो है इस्तेमाल किया जाता है, कि जिससे मुराद सिर्फ ऐसी चीजें नहीं जो कि हम खाते हैं, बल्कि इससे मुराद जो है वो तमाम चीजें हैं जो कि हम वैसे भी, यानी ऐसी सिफात जो कि हम इस्तेमाल करते हैं। तो रिस्क से मुराद सिर्फ मालो दौलत या खाने पीने की चीजें नहीं है, बल्कि हर वो नेमत है जो जिस्म या रूह की परवरिश में मददगार साबित हो, जैसे इल्म है, जवानी है, सेहत है, और ये सारी चीजें भी जो है वो इसी तरह रिस्क के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। तज अलू, तज अलू का रूट है जाला, बनाना। अंदादन निद है इसका, निद से है ये लफ्ज, इसका रूट वर्ड है नून दाल या। या आपको नजर नहीं आ रही ना, लेकिन परेशान ना हो, रूट वर्ड में ही आती है नून दाल या। इसके आप कहती हैं मैंने उसको निदा दी, मैंने उसको आवाज दी, आवाज बुलंद करना, बुलंद आवाज के लिए भी ये इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह हम नदी को भी कहते हैं। अच्छा, नदी को क्यों कहते हैं? हम तो ये कह रहे हैं कि निदा देना, निदा देना, आवाज देना। तो उसके लिए इसका लिंक ये है कि जब मुंह के अंदर पानी होता है, मुंह के अंदर रतूबत होती है, वाटर होता है, तो क्या होता है, आवाज बुलंद होती है, आवाज हसी होती है और बहुत लंबी होती है, बड़ी होती है आवाज, बुलंद होती है, ऊंची होती है। अगर मुंह खुश्क है, मुंह के अंदर पानी नहीं है, तो आवाज ऊंची नहीं होती। ऐसे उधार के मानी लेकर लेकर नदी के लिए भी ये लफ्ज हम जैसे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें क्या पता चला, आवाज बुलंद करना। और बुलंदी के लिए जरूरी है कि मुंह के अंदर नमी हो। कुरान मजीद में 30वें पारे में भी ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, फल यदउना दिया, तुम अपने, हम जो हम मशरब लोग हैं या तुम्हारे जो साथी हैं, तुम उनको बुला लो, हम भी अपनों को बुला लेते हैं, है ना। फल यदु नादिया सनद उस जबानिया। तो अब वहां पे भी क्या, नादिया के आप जिस जब आवाज देते हैं तो आपकी निदा पर नादिया आपके साथी दोस्त जमा हो जाते हैं, उसके लिए लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तालमून, इसका रूट क्या है, इल्म, अलिफ लाम मीम, अलिफ ला आयन लाम मीम, आयन लाम मीम, तालमून आयन लाम मीम, इल्म के लिए भी इस्तेमाल होता है और अलम के लिए भी, और इसी से आलम दुनिया के लिए भी इस्तेमाल होता है और आलिम इल्म रखने वाले के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है।
بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صُمٌّ بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون